मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 31 अक्टूबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं राज्यों के चुनाव और लोकतंत्र इस विषय पर कुछ बातें करने जा रहा हूं। और दरअसल इस विषय का चुनाव मैंने इस साल के मेन एग्जामिनेशन में खासकर पॉलिटिकल साइंस या यूं कह लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए किया है। आपने महसूस किया होगा यदि आप मेंस के पेपर देख चुके होंगे, नहीं देखे होंगे तो आपको अगर सही प्रिपरेशन करनी है तो देखना भी चाहिए। तो वहां अगर पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जिसे आप पॉलिटी कह सकते हैं, जो आपके सिलेबस में है, उन प्रश्नों को देखेंगे तो पाएंगे कि वो प्रश्न आपसे एक अलग तरह के ही अंडरस्टैंडिंग की मांग करते हैं। घटनाएं घटती हैं, राजनीति के क्षेत्र में घटती हैं, उन घटनाओं की आप यूं कह लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा भी होती है, अखबारों में भी उन पर एडिटोरियल कमेंट लिखे जाते हैं, आर्टिकल्स भी आते हैं। लेकिन अगर आप प्रश्नों के उत्तर देना चाहेंगे तो सीधे सीधे इनको आप इस्तेमाल में नहीं ला सकते। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं सीधे सीधे, तो फिर क्या ये आर्टिकल और जो आपके एडिटोरियल कमेंट्स हैं बेकार हैं, आपको इन्हें नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा। दरअसल बिना इन सबको पढ़े आपके दिमाग में वो बातें नहीं आ सकेंगी, आपके अंदर वह क्षमता पैदा नहीं हो सकेगी कि आप सही मायने में जिस तरीके से उसके उत्तर दिए जाने चाहिए उनके उत्तर दे सकें। इसलिए आपको उन्हें तो पढ़ना ही है, लेकिन एक अलग तरीके से, और उससे भी ज़्यादा यह कि आपकी जो नज़र है वो इन घटनाओं पर कुछ इस तरीके से होनी चाहिए मानो कि आप देख रहे हैं, और देखने के साथ ही उस देखने से परे अगर कुछ घट रहा हो या घटने की संभावना हो तो उसे भी थोड़ा देख सके। और सच बात यह भी है कि बहुत सी चीजें ऐसी भी होती हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इन लेखों में आ जाती हैं, अगर आप उन्हें पकड़ सके तो वे भी आपकी पर्याप्त मदद करेंगे। इसी बात को ध्यान में रख करके मैंने इस विषय का चुनाव किया है। अब देखिए, आपको मालूम है कि अभी दो राज्यों में चुनाव हुए, हालांकि दूसरे राज्यों में भी चुनाव हुए थे लेकिन वे उपचुनाव थे, तो उपचुनाव के परिणाम तो बहुत ज्यादा कुछ बताने में समर्थ नहीं होते हैं। लेकिन अगर राज्यों के चुनाव हो रहे हैं तो डेफिनेटली उसके जो चुनाव परिणाम हैं वो लोकतंत्र के बारे में बहुत सी बातें हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। अभी हरियाणा के चुनाव हुए, महाराष्ट्र के चुनाव हुए। हरियाणा जो है बिल्कुल दिल्ली से लगा हुआ राज्य है, और जो महाराष्ट्र है वो आर्थिक रूप से बहुत ही समृद्ध राज्य है। इस हिसाब से आप इन दोनों को कहीं ना कहीं प्रतिनिधि राज्य के रूप में मान सकते हैं। एक उधर उत्तर भारत का है तो दूसरा उत्तर पश्चिम भारत का है, तो दूसरा आप महाराष्ट्र को दक्षिण उत्तर का भी कह सकते हैं या दोनों की बाउंड्री का राज्य भी कह सकते हैं। इसलिए ये दोनों राज्य चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। अब आप देखें कि इन दोनों राज्यों के चुनाव से पहले क्या स्थिति थी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और स्पष्ट बहुमत से उसकी सरकार थी। पिछले बार के चुनाव में उसने स्पष्ट बहुमत हासिल किया था, बहुत अच्छी सफलता हासिल की थी। और खासकर अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस लोकसभा के चुनाव में तो उसने गजब ही कर दिया था, मतलब यह कह लीजिए कि वहां से दूसरी पार्टी का सफाया हो गया था। यह हरियाणा की स्थिति थी। महाराष्ट्र में भी लगभग लगभग वही स्थिति थी जो सरकार बनी थी इससे पहले, भारतीय जनता पार्टी के ही जो लीडर रहे वहां के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन सरकार जो वहां बनी थी वो शिवसेना पार्टी की मदद से बनी थी। उस समय भी यही स्थिति थी, दोनों पार्टियों ने चुनाव से पहले समझौता किया था, गठजोड़ किया था, मिलकर के दोनों पार्टियां चुनाव लड़ी थी और इसके बाद वहां सरकार बनाई गई। सरकार भारतीय जनता पार्टी की इस रूप में रही कि लगातार चीफ मिनिस्टर उन्हीं पार्टी के रहे। ये पहले की स्थिति है। अब फिर से चुनाव हुए, इन चुनाव के परिणाम आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सीट्स काफी कम हुई और कांग्रेस पार्टी को काफी लाभ हुआ, काफी वो अच्छी स्थिति में आ गई। दूसरी पार्टियां भी, हम पार्टी के सीट की संख्या पर नहीं जा रहे हैं, हम तो केवल उसके माध्यम से लोकतंत्र की कुछ बातों की तलाश करना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि नो डाउट कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया, दोनों को मिला दिया जाए तो, लेकिन उनकी पार्टी को जो सीटें मिली हैं वो पिछले बार की तुलना में कम हो गई हैं। वहां कांग्रेस भी ठीक ठाक रही और जो शरद पवार जी की पार्टी थी उसे काफी अच्छी सफलता मिली। यानी कि अगर हम इन दोनों नतीजों को मिला दें, हरियाणा और महाराष्ट्र के, तो आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पहले की तुलना में कमजोर रहा है, राइट? अब ये कमजोर रहा है, अब इसके आधार पर हम लोकतंत्र की कौन सी बातें इसमें से निकाल सकते हैं, आइए उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। और इस कोशिश को हम खासकर इस संदर्भ में देखें कि पिछले कुछ सालों से आप देख रहे होंगे कि लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए, या नहीं कराए जाने चाहिए, उसके पक्ष विपक्ष पर लगातार बहसें हो रही हैं, काफी अधिक बहसें हो रही हैं, नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंचा जा सका है। और इसको लेकर के बकायदे सिविल सर्विस मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया था, स्पष्ट रूप से क्वेश्चन पूछा गया था। अभी जो हमारे सामने दो राज्यों के चुनाव हैं, अब आप देखिए कि एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए या नहीं, उसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से संदेश देते हुए मालूम पड़ रहे हैं, और वो ये कि नहीं कराए जाने चाहिए। क्यों नहीं कराए जाने चाहिए? अभी आप देखिए कि जो केंद्र में जो वर्तमान सरकार है, इसको आए हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं, यानी कि इसके पास 5 साल पूरे करने में बहुत लंबा वक्त है। बहुत अच्छे मतों के साथ, बहुत अच्छे बहुमत के साथ केंद्र में सरकार आई है, और 5 साल तक उसके अस्तित्व पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं, अगर हम लोकतांत्रिक प्रणाली से बात करें तो उसके पास पर्याप्त सीटें हैं, राइट? एक बहुसंख्यक की भी एक डिक्टेटरशिप होती है। आप कह सकते हैं कि अगर सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है, 5 साल तक उसके लिए कोई खतरा नहीं है, तो तानाशाह बन सकता है, राइट? लेकिन जो कोलिशन गवर्नमेंट होगी, जो गठबंधन सरकार होगी, उसमें ऐसी संभावनाएं नहीं होती हैं। देखिए, हमें जो तानाशाह की बात कर रहा हूं, तो आप अपने दिमाग में हिटलर और रोमन ले आइए। तानाशाह का मतलब है कि वो जो करना चाह रही है वो करे, जो विपक्ष में जो पार्टियां हैं, जो दूसरे दल हैं, उनकी परवाह न करे, उसको लगता है कि ये ठीक है। अब ठीक है या नहीं है वो तो लागू करने के बाद पता लगेगा। हो सकता है कि देश कुछ और चाह रहा है, लेकिन पार्टी का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो सोचता है कि नहीं, हमारे लिए अभी ये प्रायोरिटी है, हमें इन बातों को लागू करना चाहिए, इन नीतियों को शुरू करना चाहिए, इससे देश का भला होगा। भले ही पब्लिक नहीं चाह रही है या उसके विरोध में बातें भी कही जा रही हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। तो ये सारी जो स्थितियां हैं, इनको आप समझ लीजिए कि वो एक तरफा निर्णय ले रही है। अभी इसके पास बहुत लंबा वक्त है, 4.5 साल का वक्त है। अब देखिए, राजनीतिक दलों को इस बात का भी भरोसा होता है कि हम जो निर्णय ले रहे हैं वो सही है, मतलब ये नहीं कि वो कोई जानबूझकर ऐसा करते हैं, लेकिन कभी पासे उल्टे पड़ जाते हैं, है ना? और उनको ये भी लगता रहता है कि हम जो निर्णय ले रहे हैं उसे जन समर्थन हासिल है। अब ये जो दो चुनावों के परिणाम हमारे सामने आए हैं, ये कुछ कहते हुए मालूम पड़ रहे हैं। अब आप देखिए कि ये क्या कहते हुए मालूम पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों राज्यों के चुनाव में, आप यूं कह लीजिए कि राष्ट्रवाद को मुख्य मुद्दा बनाया था। वो उनके लीडर्स जहां भी जाते थे, वो अनुच्छेद 370 की बात करते थे कि कश्मीर से उसे हटा दिया गया है, कश्मीर भारत का अब सही मायने में मुख्य अंग बन गया है, हमने 35A को हटाया है, 35A को हटाने से क्या फायदा हुआ है, ये बताया जाता था। सीधी सी बात है कि जनता के मन में जो राष्ट्र प्रेम की भावना है उसको जगाने की कोशिश की जा रही थी, और यूं कह लीजिए कि इसके आधार पर मत मांगे जा रहे थे, अब सामान्य तौर पर कह सकते हैं। और आपने ध्यान दिया होगा कि जिस दिन मतदान होना था उस दिन के सुबह के अखबारों में भी एक इस तरह के स्ट्राइक की चर्चा थी कि जो सीमा क्षेत्र हैं वहां से पाकिस्तान के आतंकवादी घुसने की कोशिश कर रहे थे और उसे भारतीय सैनिकों ने उड़ा दिया और उनके कुछ ठिकाने नष्ट कर दिए, तो इसका भी अखबारों में काफी चर्चा इस घटना की भी हो रही थी। यानी उसको भी अगर आप इससे जोड़ दें तो तात्कालिक रूप से भी मतदाताओं के जो राष्ट्रवाद की जो भावना भरी गई थी उसका लाभ मिल सकता था, लेकिन नहीं मिला। अब आप देखिए कि क्या हुआ, लेकिन नहीं मिला, मतलब जो पिछली बार से भी अगर उनकी संख्या कम हो गई है सीटों की, तो इस बात का प्रमाण है कि जनता ने उसे नकार दिया। अब आपको इसी तरह से निष्कर्ष निकालने पड़ते हैं। चलिए, यानी कि उग्र राष्ट्रवाद, चरम राष्ट्रवाद, शुद्ध राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम, जो भी आप इसे नाम देना चाहें, सैन्य राष्ट्रवाद, इसको जनता ने स्वीकार नहीं किया। सामान्य तौर पर ये मुझे लगता है कि बड़े बड़े नाम नहीं देने चाहिए, सीधे सीधे राष्ट्र प्रेम उनमें है, राष्ट्रवाद को स्वीकार करते हैं, लेकिन यहां दूसरी बातों को उन्होंने तरजीह दी। मुझे लगता है कि निष्कर्ष के तौर पर यह कहना ज्यादा सही होगा कि ऐसा नहीं कि जनता राष्ट्रवाद को नकार देगी, राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को नकार देगी, लेकिन उसकी प्रायोरिटी कुछ दूसरी है। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि उसके दिमाग में संसद और विधानसभा, इन दोनों की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। उसके लिए संसद राष्ट्र है और जो विधानसभा है वो राज्य है। तो जो राष्ट्रवाद का संबंध है वो राष्ट्र से है, वो संसद से है, पार्लियामेंट उसे देखेगी। लेकिन जो विधानसभा है, जो उसके अपने राज्य के चुनाव हैं, उसका संबंध उनके अपने स्थानीय मुद्दों से है, उनकी अपनी रोज की जरूरतों से है। तो जनता की रोज की जरूरतें क्या हैं? जो रोज की जरूरतें हैं कि उन्हें रोजगार मिले, अर्थव्यवस्था ठीक हो, आर्थिक विकास हो, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, ये स्थानीय समस्याएं हैं। वो जो विधानसभा के लिए मतदान करते हैं उनमें वो स्थानीय समस्याओं के समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वहां पर इस तरह के जो राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं वो काफी कमजोर पड़ने लगते हैं। साथ ही साथ एक बात और है, इसके आधार पर आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आप देखें कि पिछले, खासकर इस बार 2019 के जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, इसके बाद से ऐसा लगता है जैसे कि विपक्ष का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया हो, यानी कि इसके लिए जो सत्ताधारी पार्टी है वो कुछ कर रही है, नॉट एट ऑल, उनकी संख्या ही नहीं है। तो विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी जो कांग्रेस थी अभी तक, वो लगातार कमजोर होती चली जा रही है। उसके अपनी पार्टी के अंदरूनी जो संकट हैं उनके कारण वो यूं कह लीजिए कि टूटती चली जा रही है या बिखरती चली जा रही है, हालांकि ऐसे कोई प्रमाण नहीं कि वो टूट रही हो, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं पा रही है। तो अभी के चुनाव में कांग्रेस को थोड़ा सा आप कह लीजिए कि जीवन दान सा मिला है, उसमें उसके सूखते हुए वृक्ष में कुछ कुछ हरियाली सी झलकने लगी है। यानी कि आप इसे इस रूप में व्याख्यायित कर सकते हैं कि जनता ने इस बात को स्वीकार किया है, या कह लीजिए कि सरकार ने अपने देश के सामने इस बात को रखा है कि हमें विपक्ष चाहिए। अगर विपक्ष नहीं है तो इनफैक्ट लोकतंत्र भी उस तरीके से नहीं रह सकता, उस तरीके से काम नहीं कर सकता जिस तरीके से उसे काम करना चाहिए। यानी कि विपक्ष लोकतंत्र की अनिवार्यता है, और जनता ने यह कहकर एक तरीके से जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको यह संदेश दिया है कि आप ऐसा मत समझिए कि हम आपके साथ नहीं हैं, हम आपके साथ भी उतने ही हैं जितने कि हम सत्ता पक्ष के साथ हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि आप हमारे सामने एक ऐसा एजेंडा पेश कर सकें, कुछ ऐसी बातें बता सकें कि हम आप पर भरोसा कर सकें, लेकिन हम आपको चाहते हैं, आप हमारी जरूरत हैं। यानी कि ये जो दो चुनाव हैं इसके परिणाम ये बताते हैं कि जो जनता है वो लोकतंत्र में सत्ता पक्ष चाहती है और उसे बहुमत दे रही है, तो वहीं वह एक मजबूत विपक्ष भी चाहती है। और मुझे लगता है कि यदि यह संदेश है, जो कि है ही, तो एक प्रकार से जनता की यह सोच लोकतंत्र के प्रति उसकी प्रौढ़ता, उसकी मैच्योरिटी को स्पष्ट करती है। और ये अभी के जो राज्यों के चुनाव हुए हैं और लोकतंत्र, इन दोनों के संबंधों को बहुत खूबसूरत तरीके से व्यक्त करती है। तो फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप अपने अपने हिसाब से देख लेंगे। और इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।